ओम शांति। आज तो मैं जब शांति कह रही हूँ ना, तो मेरे मन में तो कुछ और है, मुख से शांति कह रही हूँ। मन में क्या है? बाबा कहते हैं जब ओम शांति कहो तो बाबा जावे याद है ना, पहली लाइन में मुरली में। ओम शांति का मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये तो है, पर जब ओम शांति कहा तो मैं बाबा की सिखी लदी लाडली बच्ची हूँ, मैं बाबा का अधिकारी, राज अधिकारी, बाबा का एक बहुत बिछड़ा हुआ अभी मिलने वाला बच्चा हूँ, प्यारा बच्चा हूँ, खाली बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों को ही तो बाप मिलने आते हैं, लाडले बच्चों को ही तो बाप मिलने आते हैं, सिखी लदों को ही तो फिर बार बार कहेगा मेरे सिखी लदे बच्चे बहुत समय के बाद मिले हो। तो ओम शांति में बाबा मिलन की खुशी समाई है, ओम शांति में प्रभु प्रेम समाया है, इस ओम शांति में अतीन्द्र सुख में अतीन्द्र सुख का झूला झूलने का आनंद समाया हुआ है, परमानंद समाया हुआ है। अच्छा, आप में से जो पहली बारी बाबा से मिल रहे हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, पहली बारी बाबा, पहले नहीं मिले हैं, पहली बारी मिल रहे हैं, सचमुच पहली बारी मिल रहे हैं, ऐसे है क्या? सच्ची बात बोल रहे हो, पहली बारी मिल रहे हो। जब हम साकार बाबा के पास आते थे ना, तो हमारी टीचर बड़े उमंग से कहती थी, बाबा ये पहली बारी आए हैं। और हम भी बड़े उमंग से कहते थे, बाबा पहली बार ही आई हूँ, ये आपसे पहली पहली मुलाकात है, है ना? तो पहली पहली मुलाकात तो बड़ी रमणीक होती है ना, रोमांटिक होती है, पहली पहली मुलाकात है, ये उससे मुलाकात है जिससे तो यानी कोई मनुष्य आत्माओं के साथ तो मुकाबला ही नहीं है, ये ऐसी उसके साथ मुलाकात है जो सर्व संबंधों का सुख देने वाला, अतीन्द्र सुख का झूला झुलाने वाला, कैसी भी परिस्थिति हो साथ देने वाला, वायदा निभाने वाला, मेहनत से छुड़ाने वाला, ऐसा बाबा है। ये प्रीत अनोखी प्रीत है, पर इस प्रीत की रीत कौन सी है? यानी ये अनोखी प्रीत है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये प्रभु प्रीत, निराली प्रीत है, अनोखी प्रीत है, पर रीत भी बड़ी अनोखी है। इस प्रीत का अनुभव करने के लिए कौन सी रीत चाहिए, क्या तरीका है? परमात्मा जो है निराकार है, चलो क्योंकि सबकत थोड़ा है ना, इसलिए ज्यादा आपसे नहीं पूछती हूँ, अभी तो आज तो लिमिटेड टाइम है ना। ये तरीका ये है, रीत ये है, राज ये है कि सारा कल्प निराकार देह से न्यारा है, सारा ही कल्प सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक न्यारा भी है तो प्यारा भी है, सबका प्यारा है पर सदा न्यारा है, देह में आता ही नहीं है। परंतु अभी उसका प्यार इतना जबरदस्त है, हम मिलना है देहधारियों को, साकार लोक में साकार निवासियों को, तो अपना लोक छोड़ के रूप बदल के आ जाता है। जब धर्म की ग्लानी है, पाप बढ़ गए हैं, दुख बढ़ गया है, तो ये यादगार है, रूप बदल कर आ जा रहे, रूप बदल कर आ जा रहे। तो कौन सा रूप बदल के आया? निराकार साकार रूप में आ गया। अभी साकार में आया, जिस साकार तन का आधार लिया, तो जिस मकान में बैठा है उसके थ्रू ही मिलेगा ना। तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे, तो समझो मानो किराए तो बाबा लेता तो मकान किराए पर, अपना तो नहीं, पर निराकार साकार बनता जरूर है। जैसे आत्मा हम शरीर में आई तो हमारा साकार शरीरधारी हो गए ना, तो बाबा भी जिस रथ में आता है वो तो भाग्यशाली रथ है, पर जिस रथ में प्रवेश किया। कमला यहाँ आगे जगह है छोटी, छोटी सी हो ना, इधर से आ जाओ, यहाँ आप समा जाओगी, आ जाओ, आ जाओ यहाँ, नहीं तो ये डांस कर रही है गर्दन का, तो आज यहाँ इधर इसमें यहाँ यहाँ बैठो। तो निराकार साकार तन में आता है, तो जिस तन में आया, जिस रथ का आधार लिया, वो रथ बेशक उधार लिया पर आधार लिया, किराए पर लिया। तो जिस समय समझो मानो आपने कोई मकान किराए पर लिया है, मकान मालिक का मकान, वो बॉम्बे रहता है, मकान उनका समझो आबू में है, आपने आबू में किराए पर मकान लिया हुआ है। अभी मैं आपसे मिलने आऊं तो आप ये तो नहीं कहोगे आप मेरे से मिलने के लिए मेरे मकान मालिक के मकान में आबू में आ जाना, ये कहेंगे क्या? भाई मेरे से मिलने के लिए मेरे मकान में आना, मेरे घर में आना ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे मेरे से मिलने के लिए मेरे मकान मालिक के घर में आ जाना, मैं वहां रहती हूँ, पता है किराए पर ले, पर है तो मकान जब किराए पर है आपका है ना। तो ऐसे भी बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, तो जिस समय वो बाबा ब्रह्मा के नेत्रों से देख रहे हैं, तो वो दृष्टि किसकी? शिव बाबा की दृष्टि कहेंगे ना। तो ऐसे ही जब बाबा गुलजार, बाप दादा गुलजार दादी में आए, तो ये तो नहीं कहेंगे गुलजार की दृष्टि से, हम कहते बाप दादा की, किससे मिलने आए हैं? बाप दादा से मिलने आए हैं, भले रथ तो साकार लिया है। तो ये प्रीत की रीत का तरीका ये है कि जो सदा ही निराकार है वो साकार बन जाता है, और फिर मिलने वाले जो है वो साकार में रहेंगे तो नहीं मिल सके, अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको देह और देह के संबंध के अनेक पर्दे जो है ना, स्मृतियां, परिस्थितियां, प्रभाव, ये तीन चीजें विघ्न डालती हैं। स्मृति याद देह तथा देहधारी की स्मृति, दूसरी भगवान के सामने बैठी हैं तो भी भक्ति याद आ जाएगी, फलानी परिस्थिति है ना बाबा, अब ये आप ठीक कर देना, मेरे हस्बैंड की बुद्धि को टच कर देना, मेरे हस्बैंड की बुद्धि को टच करना, मेरे बेटे को ठीक करना, तो कौन याद आया? कौन? तो देह क्या संबंध में बुद्धि रही ना, तो जो मुझे लेना है वो तो नहीं ले सकूंगी ना। तो इसको ये नहीं कहेंगे हाँ मैं तो कल्याणकारी भावना से बाबा के सामने बैठी हूँ, इसलिए आज बाबा ने लास्ट लाइन में कहा ओम शांति का, पहली लाइन में कहा ओम शांति कहती हो तो बाबा याद आना चाहिए, और लास्ट में याद करने के लिए देह को छोड़, देह के संबंध तो क्या, देह से भी परे चला जाना चाहिए। तो एक तो स्मृतियां यानी यादें, दूसरी परिस्थितियां, पराई स्थिति है मेरी नहीं, वो प्रभु मेरा बन गया ना, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बिजनेस है, मेरा परिस्थिति, पराई स्थिति। तीसरा है प्रभाव, कोई चीज का आत्मा के ऊपर ऐसा अपने ही कर्म के हिसाब किताब में प्रभाव और अभाव इतना आ गया जो अभी हिम्मत नहीं होती है कि वो देह से न्यारा होकर के उड़ चले बाबा के पास, वो प्रभाव बंधन और बोझ बन जाता है, जिसको कहेंगे इन्फ्लुएंस। है सहज, मिट्टी लग गई है, रोज बाबा ज्ञान का जल दे रहा है तो धुलाई होवे, परंतु वो हम बार बार देह तथा देह के संबंध को पक्का करते हैं तो फिर बाबा से आत्मा अशरीरी होके मिलन नहीं मना सकती। इसीलिए तरीका क्या है कि निराकार बनता है साकार, और साकार शरीरधारियों को बन जाना है निराकार अशरीरी, शरीर में रहते अशरीरी, और जो सदा अशरीरी है वो शरीर में बैठ करके फिर आत्मा को दृष्टि दे रहा है, तो बेशक मैं आत्मा बैठी देह में हूं, पर देह में बैठे हुए भी देह नहीं हूं, तो बाबा की दृष्टि फौरन मुझ आत्मा को इंजेक्शन की तरह काम करेगी। इंजेक्शन लगते देर नहीं लगती है, एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स वो इंजेक्शन इतना जल्दी और इजी लगा लेते हैं, जो वो हाथ ऐसे रखा ही रहता है या जहां कुछ भी लगाना है, कमर पर लगाना है या इधर लगाना है, तो दिखाई नहीं पड़ता तो कहते हैं इंजेक्शन, अरे भाई इंजेक्शन लग गया। अच्छा लग गया क्या? अच्छा एक्सपर्ट इंजेक्शन लगाएगा, पता ही नहीं चलेगा, इतना सॉफ्ट रीति से लगा देते। ये बाबा की भी दृष्टि, जरूरी नहीं उस समय कोई चमत्कार नजर आवे या उस समय कोई ऐसे थोड़ा थोड़ा अंदर ऐसे ऐसे दृष्टि को ऐसे ऐसे करने, ऐसा नहीं है, सूरज की तरह ऐसे नहीं है जो आंख बंद करनी पड़े खोलनी पड़े, बंद करनी पड़े खोलनी पड़े, मलनी पड़े लाइट है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये तो आत्मिक बल है, आत्मिक दृष्टि है, आत्मिक शक्ति है, रूह को राहत मिल रही है, टच कर रही है, पर आपको कोई फोटो खींचने की या देखने की चीज ही नहीं है। मिसाल के तौर पर फूल है, फूल का रंग तो दूर से दिखाई पड़ रहा है, भाई लाल है के पीला है, गुलाबी है के नीला है, गेंदा है कि गुलाब है, वो तो फौरन हम डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे कलर देख के। अच्छा भाई कलर है पता नहीं, आजकल तो बनावटी फूल भी बहुत हैं, सचमुच सच्चा है कि नहीं है? तो फिर भाई देखने के लिए सच्चा है कि ये कागज का फूल है या प्लास्टिक वाला है, या कपड़े का, फाइन कपड़े का बनाया हुआ है, कलर तो बिल्कुल रियल लगता है। कभी ऐसे नहीं रख देते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि ये रियल नहीं है, बहुत समय तक रियल लगता है, नजदीक देखो हाथ लगाओ ये तो उसका है, फाइन मटेरियल का बना हुआ है, ये तो कागज का बना, ये तो प्लास्टिक का है, तो क्या फर्क पड़ा? उसमें जो जेंटलनेस, जो सॉफ्ट है ना टच, उससे पता चला, तो फिर भी टच तो करना पड़ा ना। परंतु सुगंध, गुलाब की खुशबू, फोटो खींच सकेंगे? खुशबू को हाथ में ऐसे लेकर के रखे हैं, दिखाई पड़ेगी? खुशबू आपको टच कर रही है, फिर वो जो टच कर रही है वो जो अंदर अनुभव हो रहा है, तो फिर आप एक पिक्चर बनाते हैं, भाई सुंदर, भाई कैसे आई, भाई ये हवा है ना, हवा में ऐसी सुगंध भरी है, तो फिर वो हवा में सुगंध ऐसे 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 ऊपर जा रही है, तो फिर पीछे पिक्चर बनी ना भाई। एडवर्टाइजमेंट वाले वो क्या करते हैं, ये एयरपोर्ट पर क्या होता है, ये सारी दुकानें जो हैं वो सेंट की हैं तो उसकी क्या करते हैं, बस वो ऐसा ही पिक्चर ही ऐसा बनाते हैं जैसे कि थोड़ा 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 ऊपर उठता जा रहा है, उठता जा रहा है, हवा में उठता जा रहा है। यानी वो जिस 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 चीज के थ्रू सुगंध आई ना उसका फोटो खींचा ना, सुगंध का तो नहीं खींचा। तो इवन जैसे सुगंध का फोटो नहीं खींच सकते, परंतु वो इतना अंदर अपना अनुभव ऐसा होता है, हाय गुलाब की खुशबू है भाई, ये चमेली की खुशबू है, ये फलाने इत्र की खुशबू है। तो उसी रियलिटी जो अभी सामने नहीं है, फूल सामने नहीं है, पर सुगंध से फूल सामने आ गया। कैसे देखा, मैंने देखा ये गुलाब की खुशबू है भाई, कैसे देखा, गुलाब तो था नहीं, सुगंध से देखा ना। तो ऐसे ही बाबा का रूप सूक्ष्म है, ज्ञान है चाहे शांति है, चाहे प्रेम है, चाहे पवित्रता है, चाहे आनंद है, चाहे शक्ति है, कोई मोटा रूप है क्या? प्रकृति की भी सूक्ष्म चीजें फोटो नहीं खींच सकते, तो ये तो प्रकृति से भी परे अति सूक्ष्म है। कई कई अपने आप को कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं मैं बहुत वक्त से योग कर रही हूं, इतना मेहनत करती हूं, क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता, मुझे कुछ अनुभव नहीं होता। मैंने कहा क्या अनुभव, इतने समय से आ रही हूं, हाँ अच्छा लगता है, ज्ञान बड़ा अच्छा है, शांति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है। पहले मेरा हस्बैंड लड़ता था तो मेरे को बहुत दुख होता था, अभी तो मुझे लगता है ड्रामा कर रहा है, मैं भी ड्रामा देखती रहती हूँ। फलाना ऐसा करता था, पहले हमारा पड़ोसी हमेशा निंदा ही करता था, हमारी चुगलियां इधर उधर करता था, अभी हम समझते इस बेचारों का दोष नहीं है, मर्सी और ही रहम आता है, तो ये तो अच्छा। तो अभी जब दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैंने कहा फिर अनुभव नहीं हो रहा है, आप कहती हो आपको अनुभव नहीं हो रहा है, कहा मुझे लाइट नहीं दिखाई पड़ती सब कहते हैं बाबा लाइट है, बाबा लाइट है, पर लाइट नहीं दिखाई पड़ती, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लाइट नहीं दिखाई पड़ती। अब ये तो एक्स्ट्रा मेहनत किया ना, राइट समझ के मेहनत नहीं किया, लाइट कौन सी है, जरूरी नहीं है कि लाइट दिखाई पड़े, क्योंकि बाबा का कोई मोटा रूप तो नहीं है ना। ये तो भक्ति मार्ग में जैसे छोटे बच्चों को, भक्ति मार्ग में हम छोटे बच्चे थे, ज्ञान में भी आए तो हम छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चों को खिलौना दिखा के, फूल रंग वाला बहुत बहुत अट्रैक्शन वाला दिखा के, घंटी कुछ बजा के, झुनझुना बजा के, वो साउंड डराते थे कि भाई ये आवाज है, इस चीज का नाम आवाज है, इस चीज का नाम कलर है, मोटी चीज दिखाई ना। तो भक्ति मार्ग में भी हमको वो चित्र भावना अनुसार दर्शन कराया, लाइट दिखाई। अभी ज्ञान मिल गया तो समझ में आ गया कि वो कोई बाबा का असली रूप तो नहीं है ना, और निराकार है तो निराकार की शक्ति भी तो निराकार होएगी। भाई ज्ञान का रूप क्या है, अच्छा दिखाओ ज्ञान का रूप क्या है कोई ज्ञान की तस्वीर? किताब बना देंगे तो उसको ज्ञान कहेंगे क्या? ज्ञान का किताब बनाया तो ज्ञान तो नहीं कहेंगे ना, पुस्तक कहेंगे ना। पर जिसने ज्ञान का अभ्यास करके प्रैक्टिकल में लाया, कहेंगे ज्ञानित्व आत्मा है। भगवान ने कहा मुझे गीता में कि मुझे ज्ञानित्व आत्मा प्रिय है। तो आत्मा में ज्ञान जो है, तो बुद्धि की बात हो गई ना, समझ की बात हो गई। योगी शीतल शांत चित होता है। अभी शांत और शीतलता कैसे दिखाई पड़े, वो उसके अनुभव की बात है ना। तो जैसे मोटी चीजें प्रकृति की भी फोटो नहीं होता, उसका उसका चित्र नहीं है, वो चरित्र है, वो चैतन्य गुण है जिसका स्वरूप। मिसाल के तौर पर अभी आप कहते हैं भाई मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, दिखाओ सर्दी कहाँ है। भाई मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, दिखाओ भूख क्या है। क्या करूं, बड़ा मेरे पैर में बड़ा दर्द है, दिखाओ। तो पैर दिखाते हो ना, दर्द थोड़ी दिखाते। ठंडी है, गर्मी है, दर्द है, यानी प्रकृति के प्रभाव की चीजें भी आप कुछ अनुभव कर रहे हैं, पर उसका कोई रूप नहीं है, पर आपके चेहरे से वो प्रकट होता है। फिर कहते बेचारे को, बेचारे को बड़ा दर्द हो रहा है, तो हम भी चेहरा ऐसा ही बनाते हैं। जिसका उसका चेहरा देखा ना, तो हमारा भी, हमको दर्द नहीं हो रहा है। वो बच्चे को कुछ दर्द है, वो माँ को मोह इतना जबरदस्त होता है, जो डॉक्टर को बताती है ना इसको इतना दर्द है, तो वो माँ का फोटो खींचो तो समझ में आ गया कि बच्चे को जो दर्द ना, माँ को तो दर्द हो ही नहीं रहा, पर चेहरा ऐसा बन गया। बाप को चिंता है बच्चे का चरित्र पता नहीं कितना खराब हो गया है। अब बाप का चरित्र तो ठीक है, पर बच्चे के चरित्र से उसका चित्र ऐसा बन गया। तो चित्र तो आपने बनाया ना वही। तो बाबा कहते मैं तो विचित्र हूँ, भक्ति मार्ग में तुमने चित्र बनाए हैं और अभी उन्हीं चित्रों पर इतना तुम डिपेंडेंट हो गए, जो अभी मैं अगर वो अपना चित्र लाइट का नहीं दिखाता हूँ तो तुम नाराज हो जाते हो। तुम अपने आप में भी शक करने लग जाते हो, मेरे में भी शक करने लग जाते हो। भाई मैं तो शांति और प्रेम का जो सागर हूँ, तो जिस वक्त तुमको सच्ची शांति का अनुभव हो रहा है, कोई मोटी चीज तो नहीं है ना। आनंद का अनुभव हो रहा है तो कोई बाहर की चीज तो नहीं है ना। अतीन्द्र सुख का अनुभव हो रहा है तो ये तो अंदर का, इतना हृदय गदगद होता है तो आप, मैं कहते हैं हृदय गदगद हो रहा है, खुश खुश में खुशी में नाच रहा है, तो वो आप जो एक्सप्रेस करते हैं उसकी हमने तस्वीर बनाई। तो जो बाबा के गुण हैं, बाबा से मिलने का मतलब बाबा के गुणों को एब्जॉर्ब करना। जैसे समझो मानो गर्मी है, आग जली हुई है, तो चलो आग, कभी ऐसा भी होता है, अभी सेंट्रल हीटिंग है भाई, पहले पुराने जमाने में आग जल रही है ना, अंगीठी जल रही है, अंगीठी के नजदीक बैठते थे। हाँ भाई नजदीक थोड़े आ जाओ, नजदीक आएंगे ना तो थोड़ी गर्मी लगेगी, थोड़ा महसूस होगा। अच्छा, परंतु सेंट्रल हीटिंग आ गई तो आपको बिल्कुल नजदीक बैठने की जरूरत है क्या? सेंट्रल हीटिंग का तो वह एटमोसफियर ही ऐसा हो गया जो कमरे में कहां भी बैठे हो गर्मी महसूस होगी ना। एसी चल रही है यानी उसका वातावरण बन गया ना। तो जैसे प्रकृति की चीजें जितनी जितनी रिफाइन होती जाती हैं, उतना उतना जो प्रकृति का जो हमारा शरीर है उसको भी अब्सॉर्ब करने की ताकत आती जाती है अथवा उसका तरीका मिलता जाता है। तो अभी हमको भी कहां भी बैठे हैं, अभी ये तो पता है, समझ है। अभी अगर समझो हाल जो है वो 10,000 का है, तो पहली सीट दूसरी सीट 10,000 तो नहीं बैठ सकेंगे, फिर भी सीट 1, 2, 3, 10, 15 तक तो होगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जो मेरे पीछे बच्चे बैठे हैं ना पीछे वाले लाइन में, उन पर मेरी नजर पहले जाती है। तो भले ये दृष्टि न जा रही हो, हमको ऐसा महसूस, क्योंकि बाबा का तो कभी कभी इतना दूर जब बैठते हैं तो जो बाबा का रथ है वो ऐसे ही दिखाई पड़ता है जैसे कोई एक डॉल बैठी है, दूर से तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है, पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है फिर। तो बाबा फिर प्रकृति को यूज करके, जैसे निराकार ने साकार का आधार लिया, प्रकृति का आधार लिया ना, तो हम जो बच्चे सामने बैठे हैं तो कई बारी बिल्कुल ऐसा महसूस होता है ऐसे जैसे बाबा के वो स्क्रीन से जैसे लाइट निकल रही है, स्क्रीन से जैसे शांति के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, स्क्रीन से ही बाबा की दृष्टि से ऐसा प्यार अंदर टच हुआ। तो क्या हुआ, वो बाबा ने प्रकृति का आधार लेके, क्योंकि हमारा बाबा के साथ योग लगा हुआ था और उस समय हम प्रकृति से न्यारे होके बाबा को देख रहे हैं, क्या करूं मैं बड़ी दूर बैठी हूं, क्या करें हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा, हम इससे भी न्यारे हो गए ना। तो वाइब्रेशन से बाबा हम बच्चों को वो शांति प्रेम पवित्रता का जैसे वर्षा कर देते हैं, जैसे सूरज की गर्मी अंदर भी बैठे हैं ना, भले रोशनी नहीं दिखाई पड़ेगी पर गर्मी लगेगी, ठंडक जो है बाहर स्नो पड़ रही है, अंदर भी बैठेंगे तो ठंड अंदर भी लगेगी, स्नो तो नहीं है अंदर पर ठंड लग रही है। तो जैसे प्रकृति का जितना पावरफुल स्वरूप है उतना दूर बैठे भी उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो बाबा तो सर्वशक्तिवान है, ज्ञान की शक्ति है, चाहे प्रेम की शक्ति है, चाहे पवित्रता की शक्ति है, चाहे आनंद की शक्ति है, कोई भी शक्ति बाबा की, वो हम आत्मिक रूप में स्थित हैं तो आत्मा एब्जॉर्ब करती है। एक बारी ये मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, गुलजार दादी 1977 में, नहीं 76 77 में तो दादी जी आई थी लंदन में, 1976 में गुलजार दादी आई थी, तो वो था 7/7/77 जब दादी जी आई थी, तो 7 तारीख 7वां महीना 77 ऐसे इस डेट में जैसे दादी पहुंची थी। गुलजार दादी जी 1 साल पहले आए थे, तो जहां पर हम ये टेनिसन रोड में लंदन में रहते थे, मकान छोटा था, था तो ऐसे दो दो स्थान हैं, तीन तीन कमरे ऊपर दो कमरा नीचे, परंतु छोटे मकान थे, मतलब तो दो दो बेड तीन बेड, और जब हमारे पास एक ही मकान था तो हम सब छोटे क्लासरूम में बस ऐसे ही दरी बिछा के, गर्मी बिछा के हम 7 बहनें भी सोती थी, छोटा क्लासरूम, इतना ही प्रैक्टिकल में, जो बाबा कहते हैं ना 3 पैर पृथ्वी एक चटाई जितना, एक सिर्फ गद्दा बिछाने का। खैर तो ये जब था तो तब दूसरा मकान भी साथ वाला भी मिल गया था, तो हमारा रूम जो था वो एक बेड वाला रूम था, फिर तो जब दूसरा मकान मिल गया तो फिर एक बेड दो बेड मैं जो और नंबर भी कम हो गया था, बाकी सेवा पर बहने चली गई थी। तो गुलजार दादी आई तो हमने अपना रूम गुलजार दादी जी के लिए ऑफर किया कि ये छोटा रूम है, अकेले रहने में ठीक है। तो गुलजार दादी जी और मैं बाबा का जो रूम है बाबा के कमरे में जाके सोई, और अपना तो भारत का रिवाज है चाहे दिन है चाहे रात है, कपड़े फुल पड़े हैं, जाके लेट जाओ सो जाओ, गर्मी है कोई बात नहीं। तो तकिया लेके चादर लेके, जून का महीना था, हम जाके सो गए। मैं समझती 1:30 बजा था, अचानक ऐसे लगा जैसे कि कोई ऐसे हमारे पास से ऐसे थोड़ा ऐसे घूम के जैसे कोई आ रहा है। मैंने समझा अरे अमृत वेला हो गया, हमारी आंख नहीं खुली। वैसे तो आंख खुल जाती है, अरे मैंने अरे आज आंख नहीं खुली, अमृत वेला हो गया। उठी देखा घड़ी में तो अभी 1:30 बजा था। ऐसा बिल महसूस हुआ कि जैसे ये सूक्ष्म और परछाई है, ये छाया जैसा लाइट का रूप नहीं लगता था, जैसे मूवमेंट महसूस हुई, कोई फोटोग्राफ नहीं था, ऐसा बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ घूम ऐसा फीलिंग ऐसे आई जैसे कि ये वो रूप ऐसे आके फिर ट्रांस लाइट कॉर्नर में था, ऐसे वहां पहुंच गया, यानी बाबा का अपना सूक्ष्म फरिश्ते वाला रूप। मैं बाबा पे उठ के बैठी तो एकदम बहुत क्लियर बाबा का मुस्कुराता हुआ रूप, और ये मुझे जैसे कि एक सुनाई पड़ रहा है बच्ची, ब्रह्मा बाबा का अपना जो शरीर प्रकृति के साथ हिसाब किताब था वो तो पूरा हुआ, प्रकृति जीत माया जीत बाबा ब्रह्मा बाबा ने तो प्रकृति के साथ हिसाब किताब पूरा हुआ, पर मेरा मेरे बच्चों के साथ हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है। तो जैसे बाबा पहले प्रकृति का आधार लेके बच्चों से मिलता था ना, तो अब भी बाबा प्रकृति का आधार लेकर के बच्चों से मिलता है। बाबा के लिए तो बाबा का जो ट्रांसलाइट है या चित्र है वो प्रकृति है ना, मैटर ही है ना। वो तब रियलाइज हुआ कि ये कभी बाबा का चेहरा मुस्कराता हुआ लगता है, कभी ऐसे होता है जैसे बाबा बड़ी पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, कभी ऐसे लगता है बाबा सीरियस है, और कोई कोई बहनों को तो बाबा का बिल्कुल ऐसे ही साक्षात्कार होता है जैसे बाबा खड़ा हुआ और बाबा ऐसे एम्ब्रेस कर रहे हैं। हमारे पास वहां पर एक मुस्लिम बहन आती है, उसको तो बिल्कुल ऐसे लगता था बाबा कमरे ट्रांस लाइट में से निकले और निकल के आओ बच्ची आओ ऐसे खड़ा हो रहा, और ये कुर्सी से खड़े हो करके ऐसे ही जैसे बाबा से मिलती थी। फ्रैंकफर्ट में हमारे पास एक ईरानियन बहन, वो भी मुस्लिम, उसको तो बाबा खा क्या रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कह रहे हैं, इतना बिल्कुल स्पष्ट चित्र से चरित्र नजर आते। तो ये तो प्रकृति का आधार बाबा लेकर के अभी भी बाबा के कमरे का अनुभव कुछ न्यारा होता है। और फिर ये भी वंडर है, हर कमरे का रूप अपना है, चित्र में भी हर चित्र। तो जैसे भक्ति मार्ग में जो श्री कृष्ण के मंदिर बने हैं, एक ही मंदिर है, पर वो गोविंद जी का मंदिर है, वो कृष्ण जी का मंदिर है, वो नारायण जी का मंदिर है, वो मंदिर अनेक अनेक, वो भी किस समय की है, इस समय जो बाबा के हर स्थान का हर प्लेस का अपना अनुभव है। बाबा का चित्र तो यहाँ भी है पर बाबा के कमरे का अनुभव अपना है, ज्ञान सरोवर में भी बाबा का कमरा है उसका अपना अनुभव है, हर हर हमारे अपने स्थानों पर भी अपना अनुभव है। तो लेता तो बाबा चित्र का आधार ही है। तो तब से वो संकल्प खत्म हुआ कि बाबा को तो हम बच्चों को, यानी हम बच्चे इतना अशरीरी होकर के जब बैठेंगे तो बाबा हमको इस प्रकृति से परे का अनुभव क्या है, आत्मा के जो गुण है उसका अनुभव हम आत्मा कर सकेंगे ना। तो अभी भी बाबा प्रकृति का आधार लेकर के हम बच्चों को हर प्रकार से अपने गुणों का अनुभव करा रहे हैं, शक्ति का अनुभव करा है, ज्ञान तो रोज मुरली से सुना ही रहे हैं। तो ये जो पहले हमारा थोड़ा संकल्प था जब शुरू शुरू में ये चित्र था, तब मतलब तब से संकल्प नहीं रहा, कोई बात नहीं बाबा का चित्र है विदेशी क्या समझेंगे, ये पहले थोड़ा संकल्प था, पर इस अनुभव के बाद ये संकल्प भी निश्चिंत हो गए, या अंदर व्यर्थ चिंतन नहीं चलता, बाबा का फोटो देख के समझेंगे ये कोई गुरु की पूजा करते हैं। बाकी पहले जो ऐसा था जब नीचे नहीं रखा था चित्र, क्योंकि बाबा ने तो कहा था दादी को कि जैसे ये कमरा है मधुबन का, वहां पर भी बाबा का ऐसा कमरा बनाओ, तो यही दादी की भावना थी। और रामानुसार जो बाबा का ओरिजिनल चित्र था, पहला ट्रांसलेट, वो ये थोड़ा फ्रेम बना था तो चित्र बड़ा चाहिए था, तो वो चित्र अपने आप ही फ्री हो गया तो लंदन में भेजा था। तो बाबा का पहला चित्र मधुबन के कमरे का, उसकी खूबी भी अपनी, उसका जो है वो प्रभाव भी अपना, भावना भी हमारी थी, सब प्रकार था। भावना भी बहुत ऊंची चीज है ये बाबा का, क्योंकि भक्ति में भी भावना से ऑटोमेटिकली वो स्वरूप दिखाई पड़ता है, क्योंकि संबंध प्रेम भरा भावना में निश्चय समाया हुआ है, तो वो एनर्जी अलाइव हो जाती है हमारे अंदर भी जो है ना, वो हृदय खुल जाता है स्वीकार करने के लिए। बुद्धि में भावना के साथ प्रेम और निश्चय है तो फिर महसूस होता है, चलते फिरते उठते बैठते बाबा मेरे साथ है, बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे बाबा के कमरे में दादी जाती हैं, दादी जी या दादियां जाती हैं, तो ऐसा महसूस होता है बाबा ने ये डायरेक्शन दिया, उसमें अपनी मत नहीं चलती, बिल्कुल क्लियर महसूस होता है ये बाबा का डायरेक्शन है, और उस अनुसार करने में क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठता है। अपनी मत होगी ना तो अनेक फिर पीछे विचार चलेंगे, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट है क्या रॉन्ग है, अपना विचार है तो उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। बाबा ने विचार दिया है तो अपने अंदर भी शक्ति है, और दूसरे भी उस विचार को जल्दी स्वीकार करते हैं क्योंकि बाबा का दिया हुआ विचार है। तो ये भी जितना हम शरीर बाहर से न्यारे होते हैं उतना बाबा की शक्ति को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अथवा बाबा की शक्ति का अभ्यास करके उसका स्वरूप बनते हैं। तो ये बाबा भी, अभी भी बाबा जब आते हैं तो आधार लेकर के ही आते हैं ना, अव्यक्त बाप दादा, अभी तो डबल फोर्स है, निराकार भी तो अव्यक्त बाबा का, साकार का संपूर्ण फॉर्म भी, तो हम भी बाबा से वो संपूर्ण शक्ति लेके। तो बाबा की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, वो जैसे इंजेक्शन का काम करती है, वाइब्रेशंस ऐसे हैं जैसे कि हमारे अंदर वो जो बाबा देने जा रहा है उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत आ जाती है। जैसे डॉक्टर लोग कोई ऑपरेशन करते हैं, इंजेक्शन कोई बीमारी को निकालना होता है तो क्लोरोफॉर्म सिंगाते हैं और फिर दवाई लगाते हैं ना, तो दर्द नहीं होता, देहभान उस भूल जाता है। तो वो वाइब्रेशंस ऐसे हैं जैसे हमको देहभान भूल गया, और बाबा कैसे गुप्त रीति से हमारी अंदर की कोई कमजोरी, कोई हमारे अंदर की बीमारी, कोई हमारे अंदर का डर, कोई हमारे अंदर में समझ की कमी, कोई हमारा सूक्ष्म संशय, ये जो आत्मा की जो चीजें है ना, वो बाबा अपने आप ही, क्योंकि प्रेजेंट है ना, इसलिए मधुबन में आने की शक्ति का काम करते हैं ना, ये फर्क है समझो, बैठे वहां भी है, परंतु जब बाबा सामने है तो उस समय उस शक्ति का, वाइब्रेशंस का असर पावरफुल होगा ना, इसलिए मधुबन की महिमा परमापार है। यानी जहां बाबा है वो मधुबन है, बाबा है तो मुरली है तो मधुबन है। तो तीनों रीति से बाबा से मिलन मनाने का फायदा जो है ना, वो एक अनोखा फायदा है। एक है वाइब्रेशंस, साइलेंस की वाइब्रेशंस, यानी चारों इतने सारे बैठे हैं, 20,000, 30,000, 25,000 बैठे हैं, तो वो बाबा हमको, बच्चों को, हमारे मन को एकदम साइलेंट होकर के हम वो एब्जॉर्ब कर ले, बाबा की शक्ति को अपने अंदर समावे, ये वातावरण मिलता है ना हमको न्यारा रहने का, डिटैच होकर के उस वातावरण से, एटमॉस्फेयर से ऊपर चले गए, बाहर के वातावरण से, देह के संबंध की जो बातें लेके आए थे, अथवा अपनी चिंता परेशानी को ही लेकर के आए थे, या कोई संकल्प ले, उससे भी न्यारे। अभी तो बस बाबा से मिलन मनाने का है, अभी मैं और मेरा बाबा। तभी बाबा कहते हैं, अगर प्यार से ये मन में गीत गाओ, कई बारी बाबा कहते हैं ना, मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो प्यारा। वो बाबा क्यों बुलवाते हैं, कि वो दिल खुल जावे तो वो जो बाकी प्रभाव है ना, बाकी मेरा मेरा खत्म हो जाए ना, क्योंकि मैं और मेरा ही हमारे हमको बाबा के सामने बैठे भी लेने नहीं देता ना शक्ति। तो इसीलिए वो वाइब्रेशंस की जैसे तैयारी है, क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन लगा दिया ताकि हम देह को भूल जावें, दुनिया को भूल जावें, प्रभाव को भूल जावें। ये ऐसा क्लोरोफॉर्म, साइलेंस की शक्ति, बाबा के आते ही, जब तक बाबा आवे, जैसे कि हम इस दुनिया से परे हैं, बस बाबा आया, बाबा के सामने ही बैठे हैं, फिर बाबा की दृष्टि जैसे लाइट हाउस होती, एक सेकंड का जैसे ऐसे घूमे, तो कभी तो ऐसे भी नहीं लगता है कि बाबा ने कोई मेरे को देखा, पर सूरज की किरणें ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस और टच तो करते हैं। सुगंध जो है वो जरूरी नहीं कि खड़ी होकर के कहां देवे, फूल के नजदीक हूं तो सुगंध है, परंतु जब फ्रेग्रेंस है तो उसमें तो ऑटोमेटिकली फैल जाती है ना। तो ऐसे वो बाबा की जो दृष्टि है वो जैसे फिर इंजेक्शन का काम करती है, शक्ति। अभी बेशक यहां महसूस ना होवे, परंतु जाने के बाद पता चलता है जो बात पहले मुश्किल लगती थी ना, वो बड़ी आसान हो गई है। जिस बात में हमको, हम अपसेट होते थे, अभी तो कोई परेशान कोई बात नहीं है, समझ भी आ गया, शक्ति भी मिल गई। तो जितने जितना आत्मा आत्मिक स्थिति में हम स्थित हैं, उतना जाने के बाद परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जरूरी नहीं कि यहाँ परिवर्तन दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ तो आप बाहर के वातावरण से जब आए तो वो ऐसा लगता है जैसे कि नॉर्मल, जैसे समझो मानो आप गर्मी से आए हो, गर्मी से जब आए तो एसी चल रही है तो ऐसा लगता है जैसे हाँ भाई ठंडक है अच्छी है। एक घंटा बैठे, दो घंटा बैठे, तीन घंटा बैठे, भूल गए गर्मी क्या थी, और ये भी नहीं याद है ठंड की कोई बात है, गर्मी सर्दी से परे हो गए, नेचुरल अब्जॉर्ब रहे, कंट्रास्ट नहीं सोच मन में आ रहा है ना। ऐसे ही सर्दी से आओ एयर कंडीशन में आके बैठो, 15-20 मिनट के बाद भूल जाता है ठंड क्या थी, बाहर जाएंगे तो पता चलेगा, अरे वो तो गर्मी थी या सर्दी है। तो मधुबन में कभी ऐसा भी होता है, पता नहीं हम बाबा से मिले तो सही, मिला कुछ के नहीं मिला। पर शक्ति तो सूक्ष्म चीज है ना, शक्ति का फोटो तो होता ही नहीं है ना, ये तो आत्मा के अंदर शक्ति भर गई। तो जब आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ रही है तो जो बाबा की शक्ति है वो तो वहां जब परिस्थिति आएगी तब दिखाई पड़ेगी ना। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने लिए आपे ही फालतू संकल्प चला के जो मिला हुआ है ना उसको भी नहीं पहचानते हैं, क्योंकि आदत है मोटे रूप से देखने की। सूक्ष्म रूप जो है ये बाबा की, यानी सूक्ष्म चेक बाबा दे रहा है, देखने में तो कागज लगता है। एक बार की बात है, एक छोटे बच्चे का बर्थडे था, किसी ने खिलौना लाया, किसी ने ड्रेस लाई, किसी ने कंप्यूटर लाया, किसी ने छोटे बच्चे, आजकल तो ये इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीजें हैं जो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बड़े बड़े साधन हैं। 5-6 साल का बच्चा, अभी पापा ने आके एक लिफाफा दिया, बहुत ऐसा एक्साइटमेंट से तो खोला पर कुछ भी नहीं था, क्या कागज दे दिया मुझे, कोई सौगात नहीं दिया, कागज दिया। अभी वास्तव में कागज तो नहीं था, 5,000 का चेक था। अब $5,000 और अभी उसको बच्चे को तो ये 5,000, तो 5,000 तो उसके एजुकेशन की फीस भी है, तो कितनी ड्रेसेस भी आ जावे, तो कितने चॉकलेट के बॉक्स भी आ जावे, कितनी पार्टी भी हो जावे, परंतु देखने में तो कागज ही लग रहा है। तो ऐसे जो बाबा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो मोटा रूप तो है नहीं, है तो सूक्ष्म रूप। तो हमको भक्ति की आदत पड़ी है मोटे रूप से लेने की, तो अभी बाबा कहते तेरे को भी फिर मोटे रूप से छोटा रूप बनना पड़ेगा, देह से निकल करके देह से न्यारी हो जा, और मैं निराकार साकार में आकर के फिर जो तेरे को साकार में काम की चीजें हैं, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, गुण चाहिए, तो मेरे पास जो चीजें हैं वो तेरे को बाहर संसार में रहते हुए जिन चीज की मदद है वो तेरे बैंक में जमा करूंगा ना। तो हम बाबा के पास आते हैं बैंक बैलेंस रखने के, बढ़ाने के लिए, परंतु ये चेक करना है, चेक मिलेगा जरूर पर चेक करना है कि मैं देह बांध में तो नहीं हूं, देह से न्यारा हूं, अशरीरी। इसलिए बार बार मन मना भाव अशरीरी होके बैठो, अव्यक्त होकर के बैठो, निराकारी होकर के बैठो, पर ये हमारा चलते फिरते अभ्यास पहले से है। तो फिर जिस समय बाबा के पास आए हैं, बाबा के घर में आए हैं, उस वक्त वो मेहनत नहीं करते, उस वक्त फिर लेने का, बर्तन साफ है ना, जल्दी भर जावे। कोई कोई समझते हैं मधुबन में जाएंगे ना, वहां ताकत लेके आएंगे तो आदत ठीक हो जाएगी, मधुबन तो वहां वो इंतजार करते रहते हैं, वहां जाके बर्तन साफ करेंगे, तो यहाँ बर्तन साफ करते रह गए तो फिर थोड़ा ही भर पाए ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तैयारी करके आओ, यानी ऐसा अपने आप को शक्ति से भरपूर करके आओ। फिर भी बाबा तो हमारा बाबा है, बच्चों को भरपूर करने वाले हैं, तो बाबा का भंडारा तो, शिव भोला भंडारी का भंडारा तो भरपूर है, अपने आप ही ऐसा सौदागर है, सब पुरानी चीजें हमसे ले लेता है और नवी दे देता है, या फिर हम ऐसे खिलौने से खेलते हैं जो हमको नुकसान करने वाला है, पुराना नहीं है, नवा है, नवी आदतें हैं, नवा प्रभाव है, नवी किसी बात से अपसेट हो गया है ना, चाकू से कभी खेलने लग जाते, कभी कैंची से खेलने लग जाते, कभी ब्लेड से खेलने लग जाते, कभी कांटों से खेलने लग जाते, ये नवे खिलौने ले आते हैं ना। तो माँ बाप क्या करते हैं, बड़ी युक्ति से प्यार से वो शार्प चीज बच्चों से लेके, तो ऐसे बाबा कई, फिर कोई हमारे जो ये कड़े संस्कार दुख देने वाले, चुभने वाले, चुभाने वाले, वो ऐसे प्यार से परिवर्तन कर देते हैं ताकि फिर हमारे को अच्छा, उसके बदले अच्छे साधन दे देते हैं खेलने के लिए। तो वो फिर बाबा, फिर मोटा रूप है ज्ञान देना हमको। तो तीसरा रूप है बाबा से मिलने का, बाबा की मुरली। क्यों हम सामने आते हैं कि वो बाबा के वर्शंस, तो वाइब्रेशंस, विजन एंड वर्शन, VVV हमको VIP बना देता है, VVVIP बना देता है। तो वो वाइब्रेशंस अशरीरी होने की से एब्जॉर्ब कर लेते, दृष्टि विजन डिवाइन बन जाता है। भगवान की दृष्टि पड़ी, नजर से निहाल किया, ऑटोमेटिकली आत्मा के देह की दृष्टि बदल के आत्मिक दृष्टि बन गई। फिर बाबा के वर्षंस जो है, महावाक्य जो है, वो हमारे लिए फिर एक यादगार है। हमारे सामने बाबा ने मुरली चलाई थी, ये मुरली हमने सन्मुख सुनी थी, तो बाबा का सीन, उस दिन की जो क्रिएटिविटी है, उस दिन का दृश्य, वो हमारे सामने जैसे रोज फ्रेश हो गया ना, वो हम फोटो खींच के ले गए ना, पर्सनल कैमरे में भर गया हमारे। तो वो मुरली फिर जाने के बाद भी हमारे पास रत्न है, हमारे पास खजाना है, उनसे हम खेलते रहेंगे ना। मुझे, मैंने कहा था ज्ञान सरोवर वालों को कि मैं 5 मिनट पहले बंद कर दूंगी, जो ज्ञान सरोवर से आए होंगे कोई, ताकि बस मिस नहीं होवे, क्योंकि 12 बजे मस्त जाती है। तो मैं अभी पूरा करती हूँ, ताकि आप लोग जिनको बस पकड़नी है वो बेशक बस पकड़ के जा सके। मेजॉरिटी तो यहाँ वाले ही हैं, फिर भी अगर कोई आए हुए हैं तो ठीक टाइम पर, और वैसे भी क्योंकि किचन वालों को भी, जिनको से आपको पैकेज लेना है अपना, तो उनके भी तो ड्यूटी है। तो मैं समझती हूँ आपको मिला जो चाहिए था, आंसर भी मिले होंगे, युक्ति भी मिली होगी, सब सब चीजें मिल गई ना। बिना मैंने कहा क्वेश्चन पूछूंगी तो टाइम जाएगा, इसलिए आप सबके क्वेश्चन बाबा ने हमको आप पे ही टच किए, और उन सब का उत्तर आपके पास आप पे ही आया होगा। यही बाबा की जादूगरी है, वो जादूगर भी है, रत्नागर भी है, तो बड़ा भोला सौदागर भी है। परसों की मुरली थी ना। ओके जी, पुरानी चीज लेकर के हीरे मोती दे देता है। ओके जी।